वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु जी। उम्मीद है कि सबके लिए आवाज़ बेहतर होगी। लिख के बताइएगा रूम में क्या आवाज़ ठीक है। आज इंशाअल्लाह ताला हम गुनाहों के असबाब में से ही मज़ीद असबाब देखेंगे और अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि वो हम सब के लिए गुनाहों से बचना इतना ही आसान कर दे जैसे हम दुनिया की बाकी नुकसानदेह चीज़ों से बचते हैं। ऐसे है कि जो अपने आप को मैं और आप अपनी ज़िंदगी में लेकर देखें तो हमें इंशाल्लाह इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और खैर का भी ज़रिया बनेगा। क्योंकि जिस चीज़ को हम ख़तरनाक समझते हैं हम उसको अपनी ज़िंदगी से हर मुमकिन दूर करने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा आप और मैं अपने आप को इन चीज़ों के करीब करेंगे जिनसे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं उतना ही हम अल्लाह ताला का कुर्ब भी पाएंगे। तो आइए कुछ चीज़ें मज़ीद सीखते हैं इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इन सारी चीज़ों को समझना आसान कर दे और हम खैर व आफियत के साथ इस सफ़र को तय करते हुए अल्लाह की रज़ा में पहुँच जाए। शुरू करते हैं। नहमतुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बिश्राहली सद्री व यस्सिरली अम्री व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। गुनाहों के बुरे असरात, इसमें से हम काफ़ी चीज़ें देख चुके जिसके बाद वाकई ऐसे लगता है कि सबसे ख़तरनाक चीज़ों में से एक चीज़ गुनाह है। लेकिन अफसोस की बात है कि जब दुनिया की मोहब्बत और खुद फरेबी का पर्दा आंखों पर आता है तो उसके बाद फिर गुनाह इतने बुरे नहीं लगते। बंदा समझता तो है कि ये बुरी चीज़ है लेकिन उसको इतना बुरा नहीं समझता। ये ऐसी जैसे एक चीज़ खुली दिखे लेकिन दूसरी सूरत है कि उसके ऊपर कोई पर्दा डाल दिया जाए तो फिर वो पर्दे के अंदर से उस तरह से चीज़ नहीं नज़र आती। बहुत सारे लोग जो गुजर गए दुनिया से उन्होंने गुनाहों को अपने लिए हलाक कर देने वाला बना समझा और यही वजह है कि वो गुनाहों से ऐसे डरते थे जिसमें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत हमें सहाबाए कराम के गुनाहों से खौफजदा होने को बहुत अच्छी तरह वाजे करेगी। फरमाया आपने क्या कि जब एक इंसान मोमिन से जब कोई गुनाह होता है, हो सकता है इससे पता चलता है कि ईमान वाले से भी गुनाह हो जाते हैं, लेकिन उसको ऐसे लगता है कि उसके पास एक पहाड़ था और वो पहाड़ अब अपनी जगह से हटकर ऊपर आ जाएगा, उसके सर पे खड़ा हो जाएगा। इसके बरक्स मुनाफिक जो है वो गुनाह को नाक पर बैठी हुई मक्खी की तरह उड़ा देता है। अगर मैं और आप अपने ऊपर लेकर देखें तो बात तो वाकई सच है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें गुनाहों की शिद्दत का एहसास लगवा दे और हम बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझें। फिर हमने लास्ट नशिस्त में गुनाहों की किस्में देखी थी। गुनाहों की जो बड़ी मशहूर किस्म तकसीम है हमारे पास वो सगीरा और कबीरा की है और हमने देखा था कि सगीरा और कबीरा को एक लाइन में रख के आप नहीं देख सकते। ये समझ लीजिए कि जिसकी नाफरमानी है वो बहुत बड़ी हस्ती है लेकिन इसके बरक्स आम लोगों की क्या आदत होती है, वो गुनाहों के बारे में क्या किस किस्म की बातें सुनते हैं वो देखा। फिर हमने उलमाए दुनिया और उलमाए आखरत का फ़र्क देखा था कि कुछ दुनिया के लिए और कुछ दीन के लिए जीते हैं, हर एक का गुना फ़र्क है। आज हम जो पढ़ेंगे बुक के एतबार से देखें तो पेज नंबर 43 का मिडल है। दिल का जिंदा होना और मुर्दगी छा जाना अमल की सरे दस जजाओ सजा है। ये लिख लीजिए। इसको आसान जुमलों में बोलूँगी तो इंशाल्लाह आप इसको जज्ब कर सकेंगे। गुनाहों के साथ दिल मुर्दा हो जाता है और नेकियाँ दिलों की जिंदगी हैं। जब दिल मुर्दा हो जाए तो समझिए कि गुनाह हो गया और ये गुनाह का असर है और इसके बरक्स दूसरी सूरत है। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी चीज़ें पैदा की हैं वो आखरत की चीज़ों के नमूने हैं। अलबत्ता अशिया में फ़र्क ज़रूर है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, लैसा फिल जन्नति शैयुन, नहीं है जन्नत में कोई भी चीज़, यशब्बुहु माफिस दुनिया इल्ला आसमान। जन्नत की चीज़ें यानी जन्नत की चीज़ों की दुनिया की अशिया के साथ सिर्फ नामों में मुशाबहत है यानी सिर्फ नाम मिलते हैं, असल में आखरत की चीज़ें दुनिया से बहुत मुख्तलिफ होंगी और उस जन्नत का तो तसव्वुर भी नहीं आंखों में आता। ये तो सिर्फ हम अपनी खुशी की खातिर उनको दुनिया की चीज़ों से रिलेट कर देते हैं। ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में नेमत देकर जन्नत की नेमतों की तरफ शौक दिलाया है और दुनिया के अजाब से आखरत के अजाब से, दुनिया के अजाब से आखरत के अजाब से डरा रहे हैं। चुनाचे दुनिया में हर जालिम को इसके जुल्म की सज़ा और हर गुनाहगार को गुनाह की सज़ा मरने से पहले भी मिल जाएगी। इस आयत का भी यही मतलब है कि मैं यामल सुअन युज्ज़ बिही, जो कोई बुरा अमल करेगा वो इसकी जजा पाएगा। बसा औकात गुनाहगार अपने बदन की सलामती, माली फरावानी को देखकर ये ख्याल करने लगता है कि इसको सज़ा नहीं मिल रही, हालांकि वो सज़ा में मुब्तला होता है, मगर इसको इस सज़ा का इदराक नहीं होता, यानी उसको पाता नहीं है, समझता नहीं है। हालांकि हुक्मा का और कौल है, गुनाह के बाद दूसरे गुनाह का मुर्तकिब होना, यानी दूसरा गुनाह करना, पहले गुनाह की सज़ा है, और नेक अमल के बाद दूसरे नेक अमल की तौफीक मिलना नेक अमल का बदला है। कभी ये सज़ा मानवी भी होती है, यानी मानों में मिलती जुलती होती है, जैसा कि बनी इसराइल के किसी आलिम का वाक़या है कि इसने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि या रब, मैंने कितनी बार आपकी नाफरमानी की, आपने सज़ा ना दी। क्या जुमला है, सुनिएगा। ए रब, मैंने कितनी बार आपकी नाफरमानी की, आपने सज़ा ना दी। आवाज़ आई, कितनी बार तुझे सज़ा मिली मगर तुझे इसका इदराक नहीं हुआ। क्या मैंने तुझको मनाजात, यानी अल्लाह से मांगने, अल्लाह से प्यार से लाड से मांगने की हलावत और मिठास से महरूम नहीं किया, यानी तुझे अल्लाह से मांगने में मज़ा ही नहीं आता, दुआ करने को तेरा दिल ही नहीं करता। जो शख्स इस पर गौर करेगा वो इस हकीकत को पा लेगा। देखिए, इस पे एक छोटी सी मैंने शॉर्ट रिमाइंडर भी दिया था कुछ दिन पहले कि जब हमें दुनिया में गुनाहों की सज़ाएं मिलती हैं तो इसका ये नहीं मतलब कि अल्लाह हमसे सब छीन लेता है, बल्कि अल्लाह नेकियों की तौफीक छीन लेता है। नमाज़ों का शौक़ चला जाता है, कुरान से मोहब्बत चली जाती है, सदका खैरात को दिल नहीं करता। तो मैं और आप ज़रा सा ख़ुद को तो चेक करें, दीन और दीन के कामों की, इस्लाम और इस्लाम की सारी लगाई हुई पाबंदियाँ और उसके कवानीन की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? क्या दिन रात बीसियों बार हम इनको नहीं तोड़ते? देखा जाएगा, हो जाएगा, फिर क्या करें, फिर आज के दौर में नहीं हो सकता, और अल्लाह को मेरा पता है, और मैं अब किस किस बात पे रुकूं, मैं किस पे ना रुकूं, हर एक अपने आप को बेहतर जानता है, आप मुझे नहीं और मैं आपको नहीं। बस इतना सोचिए कि अल्लाह से ताल्लुक़ है और अल्लाह के दीन की मेरी नज़र में कितनी हैसियत है। फिर इसके बाद हज़रत वहब बिन अलविर्द से किसी ने पूछा, क्या गुनाह करने वाला इताद की हलावत और शरीनी को महसूस करेगा, यानी गुनाह करने के बाद क्या अल्लाह की बात मानने में मज़ा आता है? फिर तो फरमाया, गुनाहकार का इसे महसूस करना तो कुजा कुजा मीन बड़ी बात है। जो गुनाह का इरादा भी करेगा वो इताद की लज्जत और हलावत को नहीं पाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ए अल्लाह, तो हमें ये सज़ा ना देना कि हमें तेरी इताद, तेरे दीन, तेरी नेक, तेरी बात मानने में मज़ा ही ना आए। बसारत की लगाम को खुला छोड़ने वाला बसीरत से महरूम होगा। इसको हाईलाइट कीजिए। बसारत क्या होती है? लॉन्ग टर्म चीज़ों को देख लेना, चीज़ों के अंदर जाना, असल में खो जाना। अब आप बसारत की और बसारत की लगाम, असल में बसारत क्या होती है देखना। अब जब आंखों से हर चीज़ देखेंगे, गंदी भी देखेंगे, ख़राब भी देखेंगे, मकरूह भी देखेंगे, हराम भी देखेंगे, अब क्या होगा? बसीरत चली जाएगी, अंदर की इंस्टिंक्ट चली जाएगी, अंदर की रोशनी ख़त्म होती। याद रखिए, जितना हमारी आंखें गुनाह वाली चीज़ें देखती हैं उतनी हमारी अंदर की बसीरत चली जाती है। हक और बातिल का फ़र्क समझ नहीं आता, सच्चे झूठे का फ़र्क नहीं, हमारे हक़ में क्या बेहतर है क्या नहीं, ये बिल्कुल हमें समझ नहीं आता। इसी तरह ज़ुबान की हिफाजत ना करने वाला दिल की सफाई से महरूम कर दिया जाएगा। यानी बेमुहाबा ज़ुबान जब बोलती है, खूब बोलती और बोलती और बोलती ही रहती है, तो ऐसे वक्त में फिर ज़ुबान के अंदर से चाशनी चली जाती है, मिठास चली जाती है, ज़ुबान बेलगाम हो जाती है ऐसे वक्तों में। ज़रा सोचिए तो सही, अपने ऊपर लेकर सोचें, दिल धक धक करने लगता है। तो गोया कि ज़ुबान की हिफाजत नहीं तो दिल की सफाई नहीं है। क्या मेरा दिल साफ़ है? मैं दूसरों से हर वक्त बदगुमान तो नहीं हूँ? हर वक्त मुझे दूसरों से गिले, शिकवे और मसाइल का शिकार तो नहीं होना पड़ता? फिर इसी तरह से अब देखिए, पेट में मुशतबे ग़ज़ा। मुशतबे क्या होती है? शुबे वाली, जिसमें शक है, शुबा है, जिसके अंदर आप कह नहीं सकते कि ये मुझे 100% ठीक लग रहा है, कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर थी। मुशतबे यानी शुबे वाली ग़ज़ा डालने वाला अपने बातन को तारीक करेगा। बातन क्या होता है? इनसाइड। अंदर रूह मर जाती है, रूह का एहसास ही ख़त्म हो जाता है कि मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया, मैंने क्या करना था, मेरे साथ क्या मामला होता। ये वो चीज़ें होती हैं जिसको आज मैं आप अपने ऊपर लेकर सोचें तो हमें इस माशरे की तस्वीर नज़र आ जाएगी। आप रोएं, चिल्लाएं, शोर करें, किसी से मोहब्बत का इज़हार करें, किसी से ऐसे आप गुस्से से बात करें, ऐसे लगता है किसी के कान से टस से मस नहीं होती बात। वजह क्या है कि उनको नेकी अंदर के अंधेरे लग चुके हैं। आप देखिए, आपको एक नेकी का मौका अपने लिए अपॉर्चुनिटी लगता है और किसी को वो अपने लिए वबाल लगता है। आपका वो शौक है, किसी का वो खौफ है। आपको उसके बाद लज्जत और सुकून मिलता है, उसको थकन होती है। आपको पॉसिबल लगता है, उसको इम्पॉसिबल लगता है। तो फिर क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है। हम सब यहाँ बैठकर अपना कोई गुनाह याद करें जिससे मुझे नेकी मुश्किल लगती है। फिर इसी तरह क्यामुल लेल से महरूम और मनाजात की लज्जत व हलावत से वे बहरा होगा। यानी जब पेट में शुबे वाले लुकमे जाते हैं ना, तो रात की इबादत की तौफीक कम हो जाती है। अल्लाह के आगे रोना धोना, उसकी लज्जत चली जाती है। इन सज़ाओं को सज़ा वो लोग समझते हैं जो वक्तन फवक्तन अपने नफूस का मुहासबा भी करते हैं। इसी तरह नेक अमल का और तकवा का बदला भी फिलहाल और सरे दस्त मिल जाता है। जैसा कि अल्लाह सुबहाना तला के नबी ने फरमाया, अन नज़रतु इलल मरअति सहमु मसमूम मिन सिहामि शैतान। यानी नामहरम औरत की तरफ देखना शैतान के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है। जो शख्स सिर्फ मेरी रजा के लिए अपनी नज़र बचाएगा, इसको ऐसा ईमान अता करूंगा जिसकी शेरीनी को अपने दिल में महसूस करेगा। आज नज़रों की हिफाजत कितनी है? पहले तो लोग स्क्रीन पे बैठकर ये चीज़ें कर देखने को बुरा कहते थे, फिर साथ पढ़ने बैठने वाले। आज तो अल्लाह पाक रखे तो नज़र पाक हो, बाहर निकल जाएं, घर में हों, फ़ोन पे, नेट में, किसी जगह पे आप मौजूद हैं, आप अपनी नज़रों को बचा लें, बड़े ईमान की बात है। अल्लाह आपको मुझे बचा के रखे। और ये भी याद रखिए कि जितना बंदा गुनाहों वाली ज़िंदगी का आदी हो जाता है, उतनी नेकियों वाली ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी। आप देखिए कि न्यू बॉर्न बेबी फितरत के तकाजे से पैदा होते ही माँ का दूध मांगता है। याद तो किसी को भी नहीं है, लेकिन अंदाज़ा तो है कि फीका दूध, कोई उसमें बहुत ज़्यादा रंग अमेज़ी नहीं है। लेकिन एक दफ़ा आप बच्चे को मीठे शरबत और कोक और दूसरी चीज़ों पर डाल दें तो फिर उसको दूध नहीं अच्छा लगता। बस जब फितरत पे रहेंगे तो नेकी में ही मज़ा है, और जब नेकी से हटे तो फिर कह लीजिए कि जब माँ ने खुद अपने हाथ से काला पानी दिया मीठा, तो बच्चा दूध क्यों पिए चाहे वो कितना वाइट क्यों ना हो। फिर इसी तरह नेक अमल पर मिलने वाले बातनी सवाब की ये एक झलक है, और ज़ाहरी सज़ा जज़ा का पता चल जाना भी कम ही लोगों को होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह के वक्त सोना रिस्क को रोकता है। इसी तरह दूसरी जगह फरमाया, इन्नल अब्दु ला यहरुमुल रिस्क बिज़म्बी युसीबहु। क्या उर्दू देख लीजिए, इंसान गुनाह की वजह से मिलने वाले रिस्क से महरूम हो जाता है। अब आप बताएं, हमारे कल्चर में, हमारे घरों में, और फिर ख़ास तौर पे वीकेंड्स पे किसको सोना सुबह का अच्छा लगता है, किसको शाम? कितने लोग हैं जो यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हो सकते हैं, क्यों नहीं होते? वो अलामा इकबाल ने कहा ना कि किस कदर तुम पर गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कहाँ प्यार है, नींद तुमको प्यारी है। वीकेंड पे तो दिल करता है सूरज भी ना निकले, जब हमारी नींद बुरी हो जाए और हम लेट लेट के थक जाए फिर कभी सूरज निकले। हज़रत उस्मान अनीसापुरी के बारे में आता है कि जुमे की नमाज़ के लिए जाते हुए इनके जूते का तस्मा टूट गया। इसको ठीक करने लगे और फरमाया, ये इसलिए टूटा कि मैंने जुमे के लिए गुसल नहीं किया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप कहते हैं ना कि जुमे के दिन गुसल वाजिब है, ख़ास तौर पे जो मस्जिद में जुमे के लिए जाए, तो नहीं किया होगा, सुस्ती हुई होगी या रिलैक्सेशन होगी, तो कहते हैं देखा सज़ा मिली, जूता टूट तस्मा टूट गया। अपने लिए दुआ करें अल्लाह ये फहम दे दे, जहाँ लुड़खड़ाएँ, जहाँ लड़खड़ाएँ, जहाँ कोई ख़राबी हो, कमी हो, वहाँ किसी से ना पूछना पड़े, खुद अंदर से आवाज़ आए कि तुम गलत कर रही हो और ये तुम्हारे अपने गुनाहों की सज़ा है। दुनिया में जुल्म की सज़ा मिलने की अजीब मिसाल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों का वाक़या है। सभी ने सुनी पड़ी है कहीं ना कहीं से। किस तरह भाइयों को अल्लाह ने फिर उसी भाई के आगे मंगते हुए यानी फकीरों के रूप में खड़ा कर दिया। यानी वो भाई जिनको कल तक मान था अपने बहुत बड़ी जमात होने का, आके तसद्दक अलैना की पुकार लगाते हैं कि हम पे सदका ही कर दो, कि इनके हाथों ने जुल्म की इंतहा कर दी और इंतहाई कम कीमत में भाई को बेच डाला, तो अल्लाह ताला ने इन्हीं हाथों को मांगने की हालत में यूसुफ के सामने फैला दिया और कहने लगे, तसद्दक अलैना, हम पर खैरात कीजिए। इसी तरह हजरत यूसुफ ने हराम से वाकिफ होने से नफ्स को बचाया, तो अल्लाह ने अजीज़ मिस्र की बीवी को हलाल तरीके से अता फरमा दिया। इसको काट दीजिए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो बात कुरान सुन्नत से नहीं मिली उसको हम नहीं कोट करेंगे। इसी तरह उस औरत ने यूसुफ के खिलाफ, मन जजाओ मन अरादा बी अहली का सुअन कहकर झूठ बोला, तो इसे अनरावत तहू का कहकर हक का इकरार करना पड़ा। ये बात सच है, यानी शौहर के सामने यूसुफ पे झूठा इल्ज़ाम लगाती है और यहाँ भर सरे महफिल सब के आगे यानी सबके बीच में उसको इकरार करना पड़ा कि हाँ, ये मैं थी जिसने यूसुफ को वरगलाया था। अगर इंसान महज अल्लाह की रजा की खातिर गुनाह को छोड़ेगा तो इसके समरात को दुनिया में भी पाएगा, इसी तरह नेक अमल का फल भी ज़रूर मिलेगा। जैसा कि हदीस में है, आपने फरमाया, जब तुम माली तंगी में मुबतला हो जाओ तो सदका देकर अल्लाह ताला के साथ तिजारत करो, यानी सदका करो, इससे माल बढ़ जाएगा। हम कहते हैं लो पहले ही थोड़ा है, अब और दे दें, करके तो देखिए। देखिए बाज़ दफ़ा ब्लड में कोई प्रॉब्लम होती है, सारा ब्लड निकालते हैं। कोई कह लो पहले ही बीमार है, अब और ब्लड निकालें, तो कहा जाता है पहले ये गंदा निकलेगा फिर साफ आएगा। तो बाज़ दफ़ा माली तौर पे भी इंसान परेशान हुआ होता है, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए खैर रखी होती है उसी में। बाज़ बुज़ुर्गों की एक आयत है कि उन्होंने अपनी जवानी के ज़माने में एक बांदी खरीदी। फरमाते हैं, जब मैं इसका मालिक बन गया तो इसकी तरफ मेरा शौक बढ़ गया, तो मैंने फुकहा से इससे फ़ायदा उठाने के बारे में पूछा। सब ने कहा, हैज़ आने से पहले किसी किस्म का फ़ायदा उठाना दुरुस्त नहीं, हत्ता कि शहवत की नज़र से देखना भी जायज़ नहीं है। तो मैंने इस बांदी से पूछा तो इसने कहा कि खरीदते वक्त वो हाइजा थी। तो मैंने कहा, मामला आसान हो गया और काम करीब हो गया। मगर फुकहा ने कहा, इस हैज़ का एतबार नहीं, बल्कि इस्तिबरा यानी बरी होने के लिए तेरी मलकियत में मुस्तकिल हैज़ का ज़माना गुजरना लाजमी है। लेकिन मेरे नफ्स की ख्वाहिश इंतहा को पहुंच गई थी, लेकिन मैंने सब्र किया। अल्लाह ने इस सब्र के बदले इससे भी आला और अरफा नेमत अता फरमाई। यहाँ एक फिकी इशू है कि जब भी कोई औरत जंग में कैदी होकर आती है तो जिसको वो मिलती है तो वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता जबकि उसके एक पीरियड्स गुजरना जाए। ये शादीशुदा औरतों के लिए होता था क्योंकि वो पहले शौहरों की जौजियत में होती थी। तो यहाँ ये बात है कि उससे वो एक महीना गुजारना मुश्किल था, लेकिन उसने अल्लाह के लिए सब्र किया तो अल्लाह ने उसको अता किया। फिर आगे हम देखेंगे बातिन की दुरुस्तगी को। अल्लाह ताला के वजूद के दलाइल पर गौर किया तो मैंने इसको रेत के ज़र्रात से भी ज़्यादा पाया। यानी अल्लाह के वजूद के दलाइल दुनिया में फैली हुई रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा है, फिर ना कोई देखे तो उसकी अंदर की आंख बंद होने की अलामत है। और ये भी देखा कि इंसान अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम पोशीदा तौर पर करता है मगर अल्लाह ताला इसको ज़ाहिर कर देता है, अगरचे देर से ही क्यों ना हो, लोगों की ज़ुबानों पर ज़ाहिर होती है। बाज़ दफ़ा इसकी गलतियों में लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना भी करता है जो तमाम पोशीदा गुनाहों का बदला होता है। ये इस बात को बताने के लिए होता है कि एक ज़ात ऐसी मौजूद है जो हर अमल का बदला देती है, इसके सामने कोई चीज़ पोशीदा नहीं। इसी तरह इंसान कोई नेक अमल खुफिया तौर पर करता है मगर वो लोगों के सामने जाहिर होता है, लोगों के ज़ुबान ज़दे आम हो जाता है और लोग इसके हुसन को कसरत से जिक्र करते हैं। महासिन क्या होता है, यानी उस चीज़ का खूबसूरत होना। इसके गुनाहों को भूल जाते हैं। ये इसलिए होता है कि इंसान को यकीन हो कि अल्लाह ताला किसी के अमल को ज़ाया नहीं फरमाते। इंसानों के दिलों में किसी की मोहब्बत या नफरत इसके ताल्लुक माअल्लाह के बकदर होती है। ये भी लिख ले, किसी के लिए दिलों में मोहब्बत या नफरत अल्लाह डालता है। पहली बात, कितनी डालता है, जितनी उस शख्स को अल्लाह से मोहब्बत होगी ना उतनी लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डल जाती है, और इसका ऑपोजिट भी है। अगर इंसान नेक हो तो लोगों के दिलों में इसके लिए मोहब्बत होती है, और अगर बद हो तो नफरत होती है, इसलिए कि लोगों के दिल अल्लाह ताला के कब्ज़े में हैं। अगर इंसान लोगों के साथ मामला दुरुस्त रखकर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ ख़राब करेगा तो मामला उल्टा होगा, इसकी तारीफ़ करने वाला इसकी बुराई बयान करेगा। देखिए अल्लाह ताला बंदे के साथ कितना रहम करते हैं, और ये उसकी शान है कि वो इंसान के गुनाहों को छुपा देते हैं। याद रखिए कि लोगों के दिल अल्लाह के कब्ज़े में हैं। मोमिन अल्लाह ताला के करीब होता है, लोगों के भी करीब होता है। हदीस में आता है और बुखारी की रिवायत में भी ये चीज़ आती है, और सूरत मरियम में आता है, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति सयजअलुलहुमुर्रहमानु वद्दा, कि जो लोग ईमान लाकर अमल सालेह करते हैं तो अन करीब रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत डाल देता है। और वो बुखारी की रिवायत भी आप याद कर लें कि अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल से फरमाता है, फ़लाँ से मेरी मोहब्बत है, तुम इससे मोहब्बत करो। तो जिब्रील इससे मोहब्बत करते हैं और ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ के साथ मोहब्बत करता है, तुम इसके साथ मोहब्बत करो, तो सब मोहब्बत करने लगते हैं। अगर किसी से नाराज़ हो तो जिब्राइल फरमाते हैं, मैं फ़लाँ शख्स से नाराज़ हूँ, तुम भी इससे नाराज़ हो जाओ। तो जिब्राइल भी इससे बुगज़ करने लगते हैं, और आसमान में भी ऐलान करते हैं कि फ़लाँ से अल्लाह बुगज़ रखता है, तुम भी इससे नफ़रत करो। तो तमाम आसमान वाले नफ़रत करने लगते हैं, फिर अहले ज़मीन में भी इसके साथ नफ़रत होती है। तो ख़ुलासा क्या है फिर? अपने आप को मोहब्बतों के पैमानों से परखें। अब आप कहेंगे हमें जो ज़्यादा लोग पसंद करते थे जब हम अल्लाह की नहीं मानते थे, तो ये भी तो देखिए ना, फिर कौन करते थे? याद रखिए, जो अल्लाह को पसंद हो वो आपसे प्यार करे तो खुशी है ना। ख़ुलासा क्या है? जब आप अच्छे काम करते हैं तो अच्छे लोग आपसे प्यार करते हैं, और जब बुरे काम करते हैं तो बुरे लोग आपसे प्यार करते हैं। अब आपका मेरा अपना फ़ैसला कि हम खुद क्या चाहते हैं। क्या ये गुठलियाँ नहीं सुझ रही? कई लोग हैं, कितनी बीवियाँ जो शिकवे करती हैं शोहर प्यार नहीं देता, कितने माएँ रोती हैं बच्चे प्यार नहीं करते, भाई बहन प्यार नहीं करते, वो मेरे साथ ऐसे हैं, वो मेरे साथ वैसे हैं। क्या मैंने आपने इस आईने में अपनी मोहब्बतों को परखा और पाया? और जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितना गौर व फिक्र करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपको उसके अंदर से सच्चाई नज़र आएगी। ये वो चीज़ें होती हैं जो एक इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत बन के आती हैं, और इंसान उससे फ़ायदा उठा लेता है और कभी नहीं उठाता। इसके बाद हम देखेंगे ख्वाहिशात नफ्स में इफ़रात। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको नोट कीजिए, क्योंकि गुनाहों की जो वजूहात है उसमें पीछे भी हम पढ़ के आए कि एक बहुत बड़ी वजह नफ्स की ख्वाहिशात है। नफ्स इतना मोटा हो चुका होता है कि वो हमसे ज़्यादा गुनाह कराता है, और अगर अभी से लेकर सुबह से लेकर अभी तक के जो गुनाह थे सिर्फ उनको याद करें, चलें कल के तो भूल गए होंगे, आज के तो याद है ना। आप देखेंगे फजर की छुट्टी, सोने की नीयत, सोने की ख्वाहिश, बस इसी से लगा लें। दिन का आगाज़ ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने में हुआ, और उसके बाद तो एक दरवाज़ा खुल गया। थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। ख्वाहिशात नफ्स में इफ़रात, दुनिया की ख्वाहिशात पर तामुल करके, तामुल मीन गौर करना, ज़रा सोचना, इस नतीजे पर पहुंचा कि ये हलाकत की चीज़ें हैं, खराबी के फंदे हैं। अक़ल अगर तबीयत पर गालिब हो तो बच जाएगा, लेकिन अगर तबीयत अकल पर गालिब आई तो हलाकत ही हलाकत है। नफ्स की ख्वाहिशात में सबसे ज़्यादा हलाकत खेज जिनसी ख्वाहिशात हैं, इसमें पढ़ने की बिना पर कमी की बजाय इजाफा ही होता रहता है। जब किसी खूबसूरत चीज़ की तरफ मायल होता है तो आम आदत से बढ़कर कुव्वते गरीजिया हरकत में आती है, और अगर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत की तरफ नज़र जाएगी तो हरकत में और इजाफा होगा, खरूज मनी पहले से ज़्यादा होगी। इस तरह जौहरे ज़िंदगी फना होगा और जल्दी बुढ़ापे के दरवाज़े पर पहुंच जाएगा। यानी जितना एक इंसान किसी खूबसूरत चीज़ या खूबसूरत औरत की तरफ देखेगा उसके जिनसी जज्बा ज़्यादा आएगा, और एक वक्त आएगा कि वो वक्त से पहले ख़त्म कर चुका होगा उस चीज़ को जो उसके फिर बुढ़ापे और बीमारियों का ज़रिया बनेगी। इसके बिल मुकाबल किसी बदसूरत औरत के साथ जीमा का मामला हो तो कुव्वते गरीजिया में हरकत कम होती है, खरूजे मनी भी कम से कम होती है, और इश्तियाक बाकी रहता है, नज़र इधर उधर जाती है। इसके बाद पेट की शहवत है, यानी बात वाज़े है कि जिस चीज़ को भी ज़्यादा मौका मिल जाता है एक्सपोजर का, फिर वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद पेट की शहवत है, इसको भी समझिएगा। मकदार से ज़्यादा खाने वाला अपने नफ्स के लिए बहुत सारी खराबियां जमा करता है। इसी तरह इंतहाई कम खाने वाला भी नुकसान से खाली नहीं होता। तो इस नतीजे पर पहुंचे कि हर काम में इतेदाल और औसत दर्जा यानी मॉडरेट रहना, दर्जे महमूद और सबसे बेहतर है, इसी को इख्तियार करना चाहिए। दुनिया एक खुला मैदान है, इसमें अक्ल से काम लेने वाला ही कामयाब व कामरान है। जिसने ज़िंदगी की लगाम को तबीयत के हाथ थमा दिया, इसका जल्द से जल्द हलाक होना यकीनी है। ये तो दुनिया का मामला है, आखिरत के मामले को इस पर कयास करो तो मामला समझ आ जाएगा। देखिए, आप कोई चीज़ पसंद करते हैं, बस आपको आइसक्रीम अच्छी लगती है, पहला कप खाएंगे मज़ा आएगा, दूसरा खाएंगे भी आएगा, तीसरे में थोड़ी सी असीरी होगी और चौथा कप सज़ा, पांचवा तो बिल्कुल ही जुर्म लगेगा। बस जो ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हम पूरी कर लेते हैं ना, फिर वो उनकी लज्जत ख़त्म हो जाती है। हर जज्बा जो थोड़ा थोड़ा करके पूरा हो ना, उसका फिर बाद में देर तक इंसान एंजॉय करता है। इसकी तो अभी से मिसालें अपनी ज़िंदगी से देख सकते हैं। तो क्या नतीजा क्या निकला, खुलासा क्या है? अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को इत्तेदाल के साथ इंजॉय भी करें। ये नहीं कहा गया कुछ ना खाओ, कुछ ना पहनो, कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता ना निभाओ, सब कुछ करो लेकिन अफरात और तफरीत से बचते हुए। अब इसके बाद जो अगली हमारी तवज्जो होनी चाहिए वो है ईमान और गुनाह। आइए देखते हैं कि इन दोनों का आपस में रब्त क्या है, क्या तरीक़ाकार है कि मैं और आप अपने ईमान को बढ़ाते जाएं और उसको नतीजे में गुनाह हमारी ज़िंदगियों में कम से कम होकर ना होने के बराबर रह जाए। छोटे छोटे जुमले अगर 1 2 3 कर लेना तो हर टॉपिक के अंदर से आपको 8 8 10 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं बाद में गौर व फिक्र के, जिसमें से फिर आप अपनी चेक लिस्टें बना सकते हैं। तो पहली बात लिखिए कि मोमिन गुनाहों में मुनहमिक नहीं होता। मुनहमिक है इन्हमाक, हमक से है, यानी इतना मगन हो जाना कि इर्द गिर्द की होश ना हो। कभी वंस अ वाइल टंग स्लिप, आंख भटक गई, निगाह भटक गई, वो एक इंसान की इंसानियत की दलील बन सकती है, लेकिन आदि मुजरिम ये इंसानियत नहीं है। अपनी ख्वाहिश पर गालिब होता, ये दूसरा जुमला लिखे, ख्वाहिश उस पर नहीं, वो ख्वाहिश पर गालिब होता है। तीसरी बात, ख्वाहिशात नफ्स की आग पर काबू पा लेता है, यानी ख्वाहिशात हमारे दिल में आग लगाती हैं, मोमिन उस आग पर काबू पाता है। चौथी बात, ईमान की बरकत से गुनाहों को तबन नापसंद करता है, यानी ईमान का एक आफ्टर इफेक्ट क्या है कि गुनाह बुरे लगते हैं, लज्जत कदम लोग खुश हो रहे होते हैं, वो कहते हैं ये बेवकूफ़ है, नहीं हंस रहे, ये हंसने की बात है, ये तो रोने की बात है, लोग क्यों इंजॉय करें, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया, यानी बिल्कुल तबीयत ही नहीं गुनाहों की तरफ जाएगी। फिर अगली बात नोट करें, गुनाह करने का इरादा नहीं करता, यानी सोच के दूर से उसको घिन आ रही है तो इरादा कहाँ करेगा, ना ही गुनाह सरजद होने के बाद दोबारा गुनाह की तरफ लौटता है। हो गया एक दफ़ा, हो गया, बार बार नहीं, यानी भोला बना भूला, भूला तो सही लेकिन भोला नहीं बनेगा कि बार बार गुनाह करें। फिर अगली बात, अपने गुस्से पर काबू पाता है, लग्जिश होने से पहले ही तौबा की नीयत करता है। हज़रत यूसुफ के भाइयों के वाक्य में गौर करें कि गुनाह से कबल तौबा करने का इरादा होता है, कि उन्होंने यूसुफ को रास्ते से हटाने से कबल तौबा का इरादा किया और कहने लगे उक्तलु यूसुफ, यूसुफ को मार डालो, या इससे पीछे हटकर कुएं में डालने पर राजी हो गए, कहने लगे अवित्रहूहु अर्दन, इसको दूर ज़मीन में फेंक दो। फिर अमल करने से पहले ही नाबत और रजू अल्लाह का इरादा करने के लिए कहने लगे वतकूनु मिन बादी कौमन सालेहीन, यानी फिर तौबा करके नेक बन जाएंगे, यानी पहले से इरादा। अब लोग कहते हैं कि कितने अच्छे हैं, पहले ही तौबा कर रहे हैं, पहली तौबा की होती तो गुनाह होता ही ना। फिर जब इनको लेकर सहरा की तरफ चल पड़े तो इनके दिल में मौजूद हसद ने फिर अंगड़ाई ली और कत्ल करने पर तुल गए। तो बड़े भाई ने कहा ला तक्तुलु यूसुफा वल्कूहु फी गयाबतिल जुब्बी, तुम यूसुफ को कत्ल मत करो, इसको किसी कुएं में डाल दो। इसने इसको मारना नहीं चाहा बल्कि ये चाहा कि कोई काफिला आए और इसको उठाकर ले जाए। इनमें वो मुख्तलिफ अहवाल पैदा होने की वजह यह है कि दिल में मौजूद ईमान, अपनी कुव्वत की भी कदर, अपना अमल दिखाया, कभी इरादे कत्ल के बावजूद कत्ल से बाज रखने पर उभारा, कभी कमज़ोरी की वजह से तबीयत गालिब आती और गफलत गफलत असर अंदाज हुई, गफलत असर अंदाज हुई, गुनाह सर जद हुआ, फिर ईमान ने सर उठाया और गुनाह पर शर्मिंदगी और नदामत का एहसास दिलाया और अपने किए पर नादिम हुए। तब तो आप देखिए किस एक वाक्य में क्या बात समझ आई, ईमान और गुनाह साथ साथ है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। ईमान बढ़ेगा तो गुनाह कम, और ऑपोजिट भी है। जब आपका ईमान बढ़ेगा नेकियां बढ़ेंगी, गुनाह कम होंगे। जैसे सी सॉ है ना, एक साइड ऊपर तो दूसरी नीचे, इसी तरह गुनाहों का ग्राफ नीचे जाता जाएगा जितना ईमान का ग्राफ ऊपर जाएगा। एक और बात समझ लीजिए, आज के हालात मेरे जो आपके हैं ये हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। हालात की तब्दीली भी बाज़ दफ़ा हमारे लिए गुनाहों या नेकियों की तरफ जाने का ज़रिया बनती है। ज़माना एक सा नहीं रहता, हालात बदलते रहते हैं, जैसा कि इरशादे बारी ताला सूरत निसा की आयत है, व तिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। ये तो वो दिन है जो हम लोगों के बीच में घुमाते रहते हैं, वो जिसको कहते हैं कभी की रातें लंबी कभी के दिन लंबे। कभी मुख्ताजी और फ़क्र का दौर आता है, कभी माली फरावानी होती है, कभी इज्जत नसीब होती है और कभी जिल्लत से दो चार होना पड़ता है। कभी दोस्तों को खुशी होती है तो कभी दुश्मन खुशियां मनाते फिर रहे होते हैं। ये हालात आते रहते हैं, मगर अकलमंद इंसान एक असलुल असूल यानी तकवा पर बरकरार और कारबंद रहता है। यानी एक अकलमंद की जो असल बुनियाद है ना, वो तकवा होती है। तकवा की हालत में अगर माली फरावानी और दौलत मुयस्सर हो तो इसके लिए बायस खुशी होती है। अगर फ़क्र व तंग दस्ती से दो चार हो जाए तो सब्र के दरवाज़े खुलते हैं। ज़माना जैसा भी है, तकलीफ़ का हो या राहत का, इस पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए ये तमाम चीज़ें बेसबात और ज़ायल होने वाली हैं और मुतगैर व तब्दील होना इनका खासा है। जबकि तकवा अपनी जगह बरकरार रहता है और गोया इसके लिए मुहाफिज़ व निगेबान रहता है, कभी गाफिल नहीं होगा, लغزش के वक्त हाथ पकड़कर गिरने से बचाता है और राह रास पर डाल देता है। और तकवा के बगैर लज्जत कड़वाहट में बदल जाएगी और इसको तबाही और नाकामी से दोचार करेगी। लिहाजा है मुखातिब, हर हाल में तकवा को हिर्ज़े जान बना लो। हिर्ज़े जान क्या होता है? जान से लगा के रखो। इससे तंगी की हालत में भी तुम्हें राहत महसूस होगी, बीमारी के बावजूद आफियत नसीब होगी। ये इस नेमत तकवा का नकद बदला है। आखिरत में इसके बदले में मिलने वाली नेमत किसी से पोशीदा नहीं है। क्या समझ आया? तकवा के साथ दुनिया में भी इनाम मिलते हैं तो आखिरत में तो बहुत बड़ा मिलेगा। आमतौर पर लोग क्या कहते हैं, वो मुत्तकी, बड़ा बोरिंग लाइफ है उसकी, ज़िंदगी ऐसी वैसी। नहीं, याद रखिए, तकवा के साथ दुनिया की ज़िंदगी भी खूबसूरत होती है, अगर इंसान इसको अल्लाह के हुक्म के साथ लेकर चले। अल्लाह की रहमत से ये सब कुछ उसके लिए आसान से आसान होता जाएगा और वो इंसान अल्लाह ताला की रहमतों के साथ फिर अल्लाह के प्यारे बंदों में शामिल होगा। सोचिए इस पे, कुछ गौर करें, कोई नियत करें, क्या बढ़ाना है, किस तरफ निकलना है। खुद इख्तसाबी के बगैर इन मौजूआत को पढ़ना फ़ायदा नहीं देगा, जब तक अपने ऊपर लेकर ना पढ़ें। ये कोई खबरें थोड़ी हैं जो सुन ली। फिर इसके बाद है गुनाह और नेक अमल का इंजाम, ये भी बहुत अहम टॉपिक है। जो जो शख्स गुनाहों के इंजाम पर गौर करेगा, यकीनन इसकी बुराई इस पर आशकार हो जाएगी। मैंने इन लोगों के अहवाल पर गौर किया जो मुसलसल जिना और दूसरी बुराइयों के मुर्तकिब होते हैं। अपनी कुव्वत के बावजूद इनकी लग्जिशें थमने वाली नहीं होती। ऐसा लगता है गोया उन्होंने जुल्मत की चादर तान ली है, लोगों के दिल इनसे मुतनफ़िर हैं। इन्हीं गंदगियों की वजह से आखरत को भूल गए, याद इलाही से गाफिल हो गए। अगर माली वसअत हो तो गैरों के माल से, अगर तंगी और मुश्किलात दरपेश हो जाए तो कज़ा व कदर और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। फिर मैंने अनान फिक्र इन लोगों की तरफ मोड़ दिया, फिर मैंने अनाने फिक्र इन लोगों की तरफ यानी सोच का रुख इन लोगों की तरफ मोड़ दिया जो नफ्स की ख्वाहिशात के मुकाबले डट जाते हैं, जो नफ्स की ख्वाहिशात के मुकाबले पर डट जाते हैं, नाजायज़ व हराम चीज़ों से खुद को दूर रखते हैं। मैंने देखा कि दुनिया के समरात कवी और पूरी लज्जत के साथ इनके दामन में गिरे, पाकीज़ा ज़िंदगी मुयस्सर होती है, खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। अगर ज़ाहरी तंगी और मुश्किलात से दो चार हुए भी तो सब्र की तौफीक हुई, अल्लाह के फ़ैसले पर रज़ामंदी ने तलख़ी को शेरीनी और हलावत में बदल दिया। इससे मैंने इस फरमाने इलाही के इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फ़इन्न अल्लाह ला युदी अजरल मुहसिनीन, बेशक जो कोई तकवा इख्तियार करे और सब्र करे तो अल्लाह ताला उसके अजर को यानी मुहसिनों के अजर को ज़ाया नहीं करता। ये सूरत यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम को खिराज तहसीन पेश किया गया। इसके मानी को समझा और मतलब को समझा, क्या बात समझ आई। जब गुनाहों का बुरा अंजाम सामने होगा ना, तो फिर उसकी बुराई भी दिखेगी। ऐसे ही जैसे हमें मीठा खाना अच्छा लगता है, लेकिन हम कहते हैं बहुत मीठा खाएंगे तो बीमारी आ सकती है, जिसम मोटा हो जाएगा, तो हम उस बुरे अंजाम के खौफ से चीनी जैसी प्यारी चीज़ छोड़ देते हैं। इसी तरह याद रखिए, आज का सबसे बड़ा काम यह है कि खूब बुराइयों की डी ग्लैमराइजेशन कर दें। बुराइयाँ बड़ी खूबसूरत करके दिखाई जाती हैं एड्स में, फिल्मों में, ड्रामों में, गानों में, लेकिन उसका असल दिखाएं, ऊपर से वो वनीर उतार के अंदर से उसकी बुराई दिखाएं, तो इंशाल्लाह लोग उससे फिर बचेंगे। फिर इसी तरह पे दर पे लग्जिशें, ये क्या होता है? गुना बार बार होते हैं। ये कहते हैं कि इससे मैंने ये इशारा पकड़ा और कहा कि बार बार लग्जिश करने और फिसलने वाले शख्स अपने आप पर लीजिए। लिखिए, कोई काम बार बार करती हूँ, हो जाते गुना बार बार, एक ही गलती बार बार दोहराती हूँ, तो फिर आप और मैं हैं ये हमारे लिए एक किस्म की डांट है। क्या ए बार बार लग्जिशें करने और फिसलने वाले शख्स, अपने फिसलने की वजह से सबकी तरफ क्यों नहीं देखते? दोबारा इससे बच सको या इससे वाकिफ होने के बावजूद फिसलने और सुस्ती करने से नफ्स को डांट सको। देखिए ना, बर्फ़ पे एक दफ़ा पाँव फिसल जाए, मेरा हाल है सारी उम्र के लिए नसीहत ले लेता है इंसान। जूते भी दूसरे पहनेगा, बर्फ़ में चलेगा भी नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, पड़ जाए निकलना तो कितने सहारे लेगा। तो क्या गुनाहों में इंसान बार बार फिसले, बार बार स्लिप करे? वहां तो पाँव में मोच आ सकती है, टांग की हड्डी टूट सकती है, इससे तो पूरा जिस्म इंसान का खोखला हो जाता है। हर मुड़कर देखने वाला शख्स इसलिए देखता है कि मैं इसमें क्यों फिसला। ए बार बार गुनाह करके फिसलने वाले शख्स, तुम समझदार होने के बावजूद क्यों बार बार लग्जिशात में मुब्तला होते हो? जवाब दें अपने आप को हम सब। फलां फलां गुनाह क्यों करते हो? फिक्र की नज़रों से इसके अंजाम को क्यों नहीं देखते? जल्द ख़त्म होने वाली चीज़ों को हमेशा बाकी और बरकरार रहने वाली नेमतों पर क्यों तरजीह नहीं देते? बरकरार रहने वाली नेमतों पर क्यों तरजीह देते हो? और कीमती तरीन असासे को घटिया मता के मुकाबले में क्यों फरोख्त किया? एक लम्हे की नींद की लज्जत को हमेशा की बेदारी के मुकाबले में क्यों इख्तियार किया? सोचिए ना, ना समझ है ना वो शख्स, 1 मिनट सोने दो फिर हमेशा जागता रहूँगा, तो 1 मिनट का सुकून लेकर उसने पूरी रात की बेचैनी ले ली। तेरी जिंदगी पर बड़ा अफसोस है कि अजीम व शान शय को फरोख्त करके इसके बदले ऐसी नदामतें तूने खरीदी जिसको तेरी पीठ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसको हाईलाइट करें, क्यामत के दिन जो मार पड़नी, जो बोझ डलने पीठों पे, उसको इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा। और सर को झुका देने वाला बोझ तूने खरीदा जो कभी सर को ऊपर उठने नहीं देगा। और ऐसे गमों के आंसुओं का न खत्म होने वाला समंदर खरीदा जो कभी अपनी इंतहा को नहीं पहुंचेगा। कितने खूबसूरत जुमले हैं। तो अपने लिए तकलीफों का रास्ता मत चूज करें हम सब, और इसकी पादाश में सारे लोग तुम्हें बुरे बुरे अलकाबात से पुकारेंगे और कहेंगे ये क्यों हुआ तुझसे, ये गलती कैसे सरजद हुई। देखिए फिर बुरा भी बनता है, बुरे कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुनाह भी करते हैं और बेलज्जत, आदत है बस, सब कर रहे हैं, मुआशरा कर रहा है, जो सब कर रहे हैं वही मैं करूँगा, जो सब की मर्ज़ी वही मेरी, जो सब के साथ होगा वही मेरे साथ होगा। ये कितनी जुर्रत की बातें हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस किस्म के काम को करके अपने आप को मुतमईन करते हैं। देखिए अंदर से तो चोट पड़ती है, किसी को ना पता चले, खुद को तो पता है क्या गुनाह करके बैठे हैं। तो ऐसे वक्त में यही कहना चाहिए कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। जितना ज़्यादा इस पे फिक्र करेंगे उतना अल्लाह ताला बचाएगा। फिर एक और बात है, और वो क्या है कि गुनाहों के आगे हथियार डालना। हथियार डालना क्या होता है? हैंड्स अप, गिव अप। गुनाहों से लज्जत सिर्फ वो शख्स हासिल करता है जो गफलत के नशे में धुत हो, जबकि ईमानदार और मोमिन शख्स गुनाहों से लज्जत हासिल नहीं करेगा, इसलिए कि गुनाह के वक्त इसकी नज़र हुरमतों ममनूयत की तरफ जाएगी और इसकी पादाश में पहुंचने वाली सजा व अकूबत से डरेगा। अगर इसकी मार्फत मजीद कवी हो जाए तो गुनाह से मना करने वाली अजीम ज़ात की अजमत का नज़ारा करेगा और इसकी लज्जत कड़वाहट से बदल जाएगी, जिसकी वजह से वो गुनाह से बच जाएगा। अगर ख्वाहिश का नशा इल्म पर गालिब हो जाए तो दिल इससे बचाने की कोशिश करेगा। लज्जत गुनाह तो सिर्फ एक लहजा व लम्हा है, मगर इसके नतीजे में जान ना छोड़ने वाली नदामत और रोने का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू होगा, और कफ़े अफसोस मिलने के सिवा कुछ नहीं। अगर मुआफ़ी का यकीन भी हो तो अताब का डर भी तो है। बहरहाल गुनाह के बहुत बुरे असरात व नतायज हैं। और हाँ, ये ख्याल रहे कि ख्वाहिशात नफ्स गफलत की बकदर अंगड़ाइयाँ लेती हैं, यानी जितने गाफिल उतनी ख्वाहिशात नफ्स ज़्यादा। ये तो दुनिया में भी देखते हैं आप, जिन बच्चों की हर बात मानी जाए ना वो और ज़्यादा मनवाते हैं, पहली मान ले दूसरी के लिए तैयार, दूसरी पे तीसरी पे। ये हमारे नफ्स का भी हाल है। फिर आप देखिए गुनाहों के अंजाम पर गौर व फिक्र। हर जकी, जकी कहते हैं अक्लमंद को, जकिया नाम भी है, हर जकी और होशियार शख्स इसके लिए लाजिम है कि गुनाहों के अंजाम से बचने की कोशिश करे, इसलिए कि अल्लाह ताला के साथ इसकी कोई कराबतदारी या रिश्तेदारी नहीं है। वो आदिल बादशाह है और अदल के साथ फैसला करेगा। इसका हिल्म अगरचे मुआफ़ करने का मुतकाजी है, मगर ये सब इसके इख्तियार में है। चाहे तो गुनाहों के पहाड़ों जैसे अजीम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, चाहे छोटे गुनाह पर मुआखजा फरमाए, तो बहरहाल गुनाह करने की चीज़ नहीं है। इससे हर हाल और हर आन बचना चाहिए। मैंने ऐसे खुशैश लोगों को भी देखा है जो ज़ाहरी और बातनी गुनाहों में मगन थे, ऐसी तकलीफ़ व अजाब में मुबतला हुए जो इनके वहमो गुमान में भी ना थे कि वो इस जैसी आजमाइश की लपेट में आएंगे। इनकी जड़ें तक उखड़ गईं, वो इमारतें अपनी बुनियादों समेत मलिया मेट हो गईं जिनको उन्होंने अपनी औलाद के लिए मजबूत बनाया था। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह ताला से बेतवज्जही और बेएतनाई बरती, और ये ख्यालों गुमान करने लगे कि जो नेकी वो कर रहे हैं वो गुनाहों को मिटाने और मुकाबिल होने के लिए काफ़ी है। तो इनके ख्यालात तो गुमानों की कश्ती डामाडोल हो गई, इसमें मकरो फरेब का पानी दाखिल हो गया, इसमें मकरो फरेब का पानी दाखिल होकर इनको गरकाब कर रहा है। गरकाब क्या होता है? डुबोना, डुबोना, डूब गई कोई चीज़। आप देखिए कि जब कोई चीज़ डूबती है तो फिर क्या होता है? पानी के अंदर चली जाती है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे ही होता है, इंसान डूब ही जाता है। और मैंने इन लोगों को भी देखा जो ख़ुद को उलमा कहलवाते थे कि वो इस बात से गाफिलो बेपरवाह हो गए कि अल्लाह ताला खलवत में भी देखता है। उन्होंने खलवतों में अच्छे काम नहीं किए तो वो कल मादूम हो गए, लोगों के दिल इनकी तरफ मायल नहीं होते। यानी जैसे दूसरों के बीच में गुनाहों से बचना है, वैसे ही अकेले में भी बचना है। अल्लाह ताला का मिज़ान अदल एक ज़र्रे को भी जाहिर कर देगा और हर खताकार को इसके किए का बदला देगा, अगरचे ताखीर से हो। बास लोग अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी का ख्याल करके बेपरवाही से गुनाह करते रहते हैं। ये गलत है, गुनाह बहरहाल गुनाह है। अल्लाह ताला इसको मुआफ़ भी कर सकता है, सज़ा भी दे सकता है। अल्लाह ताला के हिल्मो करम और जल्द सज़ा ना होने से मगरूर ना हो, बल्कि गुनाहों के बुरे अंजाम पर हमेशा गौर व फिक्र करते रहो और हर वक्त इनके असरात को मिटाने की भरपूर कोशिश करते रहो। अल्लाह ने देखे रास्ते भी दिए हैं ना बचने के। अल्लाह ताला के सामने तदर्रो आजजी करते रहो, इसलिए कि आजजी और तदर्रो से ज़्यादा गुनाहों को मिटाने में और कोई चीज़ नाफे नहीं है, यानी नफ़ा देने वाली। गुनाहों का मराकबा और सरज़द शुदा गुनाहों से तौबा गिरियोजारी पर अमल करना इस्लाह के लिए इंतहाई नाफे और फ़ायदा मंद है। गुनाहों के अंजाम पर गौर करने वाले किसी शख्स से मनकूल है, यानी उसकी ये बात नकल की जा रही है, कि वो कहते हैं, एक मरतबा एक छोटे गुनाह पर मैं कादिर हुआ। मैंने इसे रुकने की कोशिश की तो मेरे नफ्स ने कहा, ये गुनाह छोटा है। अल्लाह ताला बड़े फजलो करम वाले हैं। अल्लाह ताला का फजलो करम इससे तो बहुत बड़ा है। तो मैंने इससे कहा कि अगर तूने इसको कर भी लिया तो क्या होगा, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। मैंने इन लोगों के अहवाल उसको सुनाए कि गुनाहों की वजह से इनके नामों निशान तक मिट गए, तो वो समझ गया और इस गुनाह से बाज रहा अल्लाह ताला की तौफीक से। और तौफीक देने वाला तो अल्लाह ताला ही है। और ये आपने बात देखी होगी कि आज भी कितने लोग यही उजर देते हैं, फलां भी तो है, उसने भी तो किया, और अल्लाह गफूर रहीम, बड़े से बड़ा गुनाह करके कहते हैं अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह किसके लिए गफूर रहीम है? कुरान ने इसका भी जवाब दिया है, जो आमना व ताबा व मिला सालेहन, अच्छे अमल किए जाएं फिर अल्लाह ताला गफूर रहीम होते हैं। फिर इसी तरह देखिए कि किसी भी गुनाह को छोटा नहीं समझना चाहिए। अक्सर लोग आम उमूर में बेख्तियाती करते हैं और गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते या मामूली समझते हैं, जैसे तुलबा किताबें कुरान और या कोई किताब आरियत के तौर पर लेकर वापस नहीं करते, यानी उधार ली चीज़ फिर वापस नहीं की, और इसको जायज़ समझते हैं, हालांकि ये गुनाह है। इस तरह किसी के साथ बुलाए बगैर खाने में शरीक होना, यानी किसी ने आपको बुलाया तो आप दो चार लोग और भी ले गए एक्स्ट्रा। इसी तरह दुश्मन की इज्जत छीनने को जायज़ समझकर इज्जत के मुतल्लिक नाजायज़ गुफ्तगू करना, ऐसे भी है ना। बस हम देखिए कि आज के दौर में लोगों ने वाजिब पर अमल करने को तर्क कर दिया, खुसूसन गैर के मुतल्लिक हो तो ख्याल तक नहीं करते। अक्सर लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते, या इसको छोटा गुनाह समझ कर बेमुहाबा करते हैं, यानी बार बार करते हैं बग़ैर किसी रुकावट के करते हैं। जैसे कि गैर महरम औरत या मर्द के साथ हाथ मिलाना, दाढ़ी कटाना, सिगरेट पीना, अखबारात, रसायल और टीवी और अजनबी औरतें देखना वगैरह, जबकि एक मुसलमान पर लाजिम है कि वो ये समझे कि वो किसकी नाफरमानी कर रहा है, गुनाह के छोटे होने को ना देखे, जबकि हमारे असलाफ छोटे से छोटे गुनाह से भी हर मुमकिन हद तक बचने की कोशिश करते थे। हज़रत अनस से रिवायत है, वो फरमाते हैं, तुम जो बाल से बारीक आमाल भी करते हो, जबकि हम रसूलुल्लाह के ज़माने में इनको मोहलिकात में से शुमार करते थे। ये बुखारी की रिवायत है। मोहलिकात क्या होता है? हलाक करने वाले, डिस्ट्रॉइंग। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मोमिन गुनाह को ऐसा समझता है गोए वो पहाड़ के नीचे खड़ा है। इब्ने मसूद की ये राय है। और इस पर गिरने वाले और फाजिर गुनाह को ऐसा हल्का समझता है गोए एक मक्खी इसकी नाक पर बैठ गई और हाथ से इसको हटा दिया। ये बुखारी की रिवायत है। पीछे मैंने अनस के नाते से बात कह दी थी, उसको निकाल दीजिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, गुनाहों को हरगिज़ छोटा मत समझो, ये जमा होकर इंसान को हलाक कर देते हैं। ये अहमद की रिवायत है। अहले इल्म अहले ईमान का कहना कि सगीरा पर जरी होने से आहिस्ता आहिस्ता शर्मो हया में कमी आती है, बेपरवाही बढ़ जाती है, अल्लाह ताला का खौफ दिल से निकल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बड़े गुनाहों तक ले जाता है। सगीरा पर इसरार कबीरा है, इसलिए फरमाया गया, ला सगीरा माल असरारी वला कबीरा तो माल इस्तगफारी। कितना प्यारा जुमला है, यानी बार बार करने से सगीरा सगीरा नहीं बल्कि कबीरा बन जाता है, और तौबा इस्तिग़फ़ार से कबीरा कबीरा नहीं रहता बल्कि मिट जाता है। सुभान अल्लाह, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों की भी तो ढेरियां लग जाती हैं ना। तो क्या पता चला कि चूना को छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो हम देख रहे थे कि वो गुनाह जिसको लोग बिल्कुल ही हल्का समझते हैं या गुनाह ही नहीं समझते, वो क्या है? गैर महरम की तरफ नज़र करना। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसका मुर्तकिब शख्स खास लोगों के मर्तबे से गिर जाता है और अल्लाह ताला के हाँ भी मुकामे बुलंद से नुज़ूल कर जाता है। तो गोया कभी इसको ज़ुबाने हाल से ये भी कहा जाता है, ऐ वो शख्स जिसको आसान चीज़ बतौर अमानत दी गई, तूने इसमें ख़यानत का इर्तकाब किया, तो अल्लाह ताला की रज़ामंदी, तू अल्लाह ताला की रज़ामंदी की किस तरह उम्मीद रखता है? किसी बुज़ुर्ग का कौल है, मैंने गलती से लुक्मा मशकूक खाया, इसकी वजह से मैं 40 साल पीछे चला गया। अल्लाह अकबर। देखिए लोग अपने तजुर्बों से ये बातें कहते हैं ना। तो सुनो, इन बातों को सोचो, इनके इंजाम पर गौर करो, इन गुनाहों से रोकने वाले की अजमत को समझो, गुनाह की हल्की झलक से भी बचो, चिंगारी को हरगिज़ छोटा मत समझो। इसलिए कि चिंगारी पूरे शहर को जलाकर खाकस्तर कर देती है, यानी बिल्कुल मिट्टी बन जाता है, वो चीज़ मिट्टी बन जाती है। ये मुश्ते नमूनाज खरवारे के तौर पर चंद इशारात हैं, यानी ये सिर्फ चंद एग्जाम्पल्स हैं। मुट्ठी भर मुश्त कहते हैं मुट्ठी को। एक नमूना पेश किया है जिसके जरिए गुनाहों को हल्का और कम समझने के जरर और नुकसान से बचना आसान होगा। इल्म व मराकबे से काम लो, यानी गुनाह के इंजाम को रोजाना सोचा करो और बसीरत की निगाह से देखो और अल्लाह से माफी मांगो। इस अमल से गुनाह छुट जाएंगे और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। ये अल्लाह की शान ही है जो बंदे को देती है। आप देखिए कि जितना ज्यादा आप अल्लाह से मदद मांगेंगे, अल्लाह ताला आपके मेरे लिए गुनाहों से बचना आसान फरमा देंगे, वरना तो नहीं है कोई ताकत मगर अल्लाह की। कुछ कहिए इस बारे में, आज के लिए इतना ही काफी है, और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें कहे सुने पढ़े पढ़ाए पे अमल की तौफीक अता फरमाए। एक एक चीज़ हमारे दिल पे लिखी जाए, हमें अपने गुनाह नजर आए। इस वक्त मैं और आप अपने लिए कहें कि अल्लाह मुझे मेरा गुनाह याद दिला, और वो गुनाह खास तौर पे आज की नशिस्त में जब हमने पढ़े कि जिनको हम गुनाह ही नहीं समझे, हम कहते मेरी मजबूरी है। हाँ जी, इट्स ओके। बड़े बड़े गुनाहों से दूर रहने को हम उज्जत बनाते हैं। नमाज छूट रही है तो छूट रही है, क्या करे, बच्चा रो रहा है, मेहमान आ गए हैं, सर में दर्द हो रहा है, थक गई हूँ, जॉब पे हूँ, बच्चे को पिक करना है। तो आप ज़रा एक लिस्ट तो बनाकर देखिए अपने गुनाहों की, अल्लाह मुझे आपको मदद करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।